Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
अस्तित्व मात्र ब्रह्म है, जो ऐसा जानता है वो सत्पुरुष है, ऐसा ब्रह्म वेत्ता लोग कहते हैं। और जो ब्रह्म को नकारता है कि ब्रह्म नहीं है, वो स्वयं अपने को ही नकार रहा है, और इसका परिणाम ये होगा कि वो असत पथ में चला जाएगा। तो शिष्य ने तीन प्रश्न किए। एक तो ये कि ब्रह्म है या नहीं, दूसरा ये कि ब्रह्म तो सबके लिए समान है, इसलिए अज्ञानी को भी ब्रह्म मिलना चाहिए, भले ही वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त न करे, और नहीं तो कम से कम मरने के बाद तो मिल ही जाना चाहिए। और अगर उसको नहीं मिलता तो तीसरा प्रश्न ये है कि फिर ब्रह्मज्ञानी को भी मिलता है, इसी में क्या गारंटी है, इसमें क्या प्रमाण है, और जीते जी उसको प्राप्त हो जाता है, इसमें भी क्या प्रमाण है। ये तीन प्रश्न शिष्य के हुए, अनुप्रश्न कहा है मूल में। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म है या नहीं। तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि भाई, मैंने तो शुरू यहीं से किया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और फिर तस्मात् वाय तस्मात् आत्मना आकाश संभूता, आकाश आदि का कारण ब्रह्म को बताया था, तो आकाश आदि में तो सत्ता दिखाई दे ही रही है, इसलिए ब्रह्म नहीं है, यह सवाल क्यों पैदा होता है। तो शिष्य कहता है कि महाराज, इसमें मुझे शंका यह है कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये जो दिखते हैं, ये सब जड़ हैं, तो इनका कारण भी, इनकी सत्ता भी जड़ ही होनी चाहिए, तो उस जड़ ब्रह्म को जान करके हम क्या करेंगे। और कहो कि नहीं चेतन है, तो चेतन से सृष्टि हो नहीं सकती है, क्योंकि वो कूटस्थ है, निर्विकार है, जिसमें कोई विकार ही नहीं होता है, बदल नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होता है, तो वो संसार के रूप में कैसे बदलेगा। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं भाई, इनका कारण जो है वो चेतन ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, चेतन ही है। और रही ये बात कि वो निर्विकार है, कूटस्थ है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, तो वो कारण नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, चेतन भी कारण हो सकता है, लेकिन वो विवर्तिक कारण होगा, परिणामी कारण नहीं होगा। जैसे रस्सी बिना कुछ बदले हुए ही सांप के रूप में दिखलाई पड़ती है, जैसे स्वप्न दृष्टा बिना बदले हुए ही स्वप्न के पदार्थों के रूप में दिखलाई पड़ता है, जैसे मृग तृष्णा का जल सूर्य की किरणों के द्वारा बिना बदले ही, और माने मृग तृष्णा का जल तो होता नहीं है और वहां जल की उत्पत्ति भी नहीं होती है, लेकिन जल के रूप में जैसे दिखलाई पड़ने लगता है, बस ऐसे ही ये ब्रह्म में सृष्टि दिखलाई पड़ रही है। तो शिष्य ने कहा कि तर्क तो ठीक है, क्योंकि दृष्टांत जब है तो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन और खोल के बताइए। तब फिर ये छठे अनुवाक में जो प्रसंग चल रहा है, तो कहा कि पहले ब्रह्म जो था वो केवल ब्रह्म ही था और प्रलय काल में ये सारे जीव अपने संस्कारों को लेकर के, अपनी वासनाओं को लेकर के, अपने कर्म संस्कारों को लेकर के ब्रह्म में ही शयन कर रहे थे। जब सृष्टि काल उपस्थित हुआ, माने जब उन कर्मों के फल के भोगने का समय आया, तो ईश्वर के मन में ये प्रेरणा हुई, ब्रह्म के मन में ये प्रेरणा हुई कि अब सृष्टि करनी चाहिए। तो सो अकामयत, यहां से ये कल यहीं छोड़ा था, उसने कामना की। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी जरा रुकिए, जो कामना करता है वो तो जीव होता है, तो ब्रह्म क्या जीव है? कि उसने कामना क्यों की, उसमें कामना कहां से आ गई? तो भाष्यकार कहते हैं कि ईश्वर स्वतंत्र है, जीव जो कामना करता है वो परतंत्रता से करता है और ईश्वर जो कामना करता है वो स्वतंत्रता से करता है। जीवों के कर्मों का फल देने के लिए उसका काम ही है ये कि वो सृष्टि की रचना करे। एक स्वतंत्रता तो उसमें यह है, दूसरी स्वतंत्रता उसमें यह है कि वो बिना किसी की सहायता के ही सारी सृष्टि की रचना कर देता है। जीव जो है वो कामनाओं को करने में भी स्वतंत्र नहीं है और उनके पूरा होने में भी स्वतंत्र नहीं है, और ईश्वर कामनाओं को करने में भी स्वतंत्र है और उनके पूरा होने में भी कोई उसे कर्म नहीं करना पड़ता, कामना होते ही पूर्ण हो जाती है। तो स्वतंत्र होने के कारण ये प्रश्न ठीक नहीं है कि उसने कामना क्यों की। उसने कामना की, इसको आप अध्यारोप समझ लीजिए। जैसे जीव कामना करता है और फिर कुछ क्रिया करके संसार बनाता है, ऐसे ईश्वर में भी इसी बात का अध्यारोप कर दिया। सो अकामयत, क्या कामना की? कि बहुश्याम प्रजा ये, मैं बहुत प्रजा के रूप में, बहुत से रूपों में उत्पन्न हूं। बस उसकी कामना करने की देर थी कि वो जीवों के जो सोए हुए सब संस्कार थे, नाम रूप क्रिया गुण, वो सब के सब उदय हो गए। तो यही बहुभवन है, ईश्वर इसी रूप में है। नारायण जितने प्राणी हैं उनके शरीरों की रचना उतनी ही अलग अलग है, सबके स्वभाव अलग अलग हैं, सबके गुण अलग अलग हैं, सबकी क्रियाकलाप ये सब अलग अलग हैं। इतना भेद एक में कैसे हो गया? तो बोले कि अगर ये माने कि ईश्वर ने स्वतंत्र रूप से किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो उसमें ये दोष आएगा कि ईश्वर किसी का पक्षपात करता है, किसी से घृणा करता है। तो वो तो कुछ नहीं करता है, जैसे संस्कारों को लेकर के प्रलय काल में जीव सोए हुए थे वो ही सब उद्बुद्ध हो गए, उसमें भेद था इसलिए अब भी भेद हो गया। तो उसने क्या किया? जब उसमें संकल्प हुआ तो उसने क्या किया कि स तपो अतप्यता, उसने तप को तपा। तो सुरेश्वराचार्य जी महाराज लिखते हैं कि तप माने क्या उल्टा लटकना पेड़ पे, ये तप है, या भूखा रहना तप है? किस प्रकार का तप किया? तो बोले ये तो सारे तप जब शरीर बन जाएगा तब होते हैं ये तप। ईश्वर की कक्षा में जब तप की बात आती है तो वहां इन तपों से मतलब नहीं है। अब जैसे भागवत में आता है कि ब्रह्मा जी अपने कमल पर पैदा हो गए, अब बोले मैं क्या करूं, तो आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। अब क्या तप किया ब्रह्मा जी ने? तो मूल में तो वहां कुछ नहीं लिखा है, मूल में तो यही है कि शांत हो गए। निर्विकल्पता को परम तप बताया है, परंतु ब्रह्मा जी तो जीव है, इसलिए उनमें तो निर्विकल्प को भी तप कहा जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो जीव नहीं है, इसलिए उसका तप कैसा है? तो बोले तप आलोचने, तप धातु जो है वो आलोचन के अर्थ में। संकल्प क्यों उदय हुआ उसमें सृष्टि का, कि उनके कर्मों का फल देना है, तो फिर उसने ये आलोचना की कि किस जीव का कैसा कर्म है, उसको कैसा शरीर चाहिए, कैसी परिस्थिति चाहिए, कैसी सामग्री चाहिए। ये जो संसार बना हुआ है ये तो जीवों के समष्टि प्रारब्ध का फल है, माने किसी को धरती चाहिए, किसी को पानी चाहिए, अब मछलियों को पानी चाहिए और मनुष्यों को धरती चाहिए और देवताओं को दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, वो तेज और वायु से ही पर्याप्त है उनके लिए। तो जिसके लिए जैसी आवश्यकता थी वो वैसे ही उसने उत्पन्न की है। तो पहले ये सृष्टि की रचना की और उनके फल के अनुसार रचना की। स तपस्तप्त्वा इदं सर्वं असृजत् यदिदं किंच। यहां जो कुछ भी है उस सब की उसने रचना कर दी। अब रचना तो हो गई, उसके बाद क्या किया? उसे कर्म नहीं करना पड़ा, संकल्प से ही रचना हो गई। तो ये भगवान का संकल्प ही दिख रहा है नारायण, जितनी दुनिया दिख रही है ना। ये कभी कभी सोचने में बड़ा आनंद आता है कि ईश्वर का संकल्प है ये। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये किसका अनुभव है? शंकर भगवान का। माने भगवान का अनुभव ये है कि ये सारी सृष्टि मेरा स्वप्न है। जैसे जीव अपने स्वप्न के पदार्थों में अपने आप को ही प्रोजेक्ट करता है, इसी प्रकार से ईश्वर ने अपने आप को ही नाम रूपों में प्रोजेक्ट कर रखा है। तो एक सज्जन बोले कि फिर तो जब भगवान का सपना टूटे तब हम इस संसार से मुक्ति हो। तो महाराज जी ने कहा कि तुम सपने में घूमने वाले पुरुष हो कि सपना देखने वाले पुरुष हो? अगर तुम घूमने वाले पुरुष हो तब तो इंतजार करो कि सपना कब टूटे, तब हमारी मुक्ति होगी। और अगर तुम पूरा सपना देखने वाले स्वप्न दृष्टा हो तो अपने दृष्टा स्वरूप को अनुभव कर लो, स्वप्न तो टूटा ही हुआ है। तो हमारी गलती यही होती है कि हम शरीर को अपना आपा मानते हैं ना, तो ये शरीर तो जैसे सपने में अपने आप को देखते हैं हम चलता फिरता, ये ऐसा चलता फिरता ये शरीर दिख रहा है, ये तो स्वप्न पुरुष है, और जो देख रहा है वो स्वप्न दृष्टा है। तो मैं तो देखने वाला हूं, मैं जो दिख रहा है वो नहीं हूं। अच्छा, तो सृष्टि हो गई तो अब फिर परमात्मा ने क्या किया? तो फिर कहते हैं तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। ये सृष्टि रच करके वो ब्रह्म जो था इसमें ही अनुप्रविष्ट हो गया, पीछे से उसमें घुस गया। अब इस पर बड़ा लंबा भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा है कि कैसे घुस गया, घुसने का तरीका क्या है। कोई परिच्छिन्न वस्तु जैसे किसी परिच्छिन्न वस्तु में घुस जाती है, घड़े में जैसे पानी घुस गया, हवा घुस गई, या आकाश घुस गया, या दर्पण में जैसे प्रतिबिंब घुस गया, या घड़े में जैसे मिट्टी भर दो या अनाज भर दो तो ऐसे उसके अंदर भर गया, आखिर ये अनुप्रवेश किस प्रकार का है, तो ये सब परमात्मा में लागू नहीं होते हैं। कहो घड़े में मिट्टी घुस गई, तो घड़ा तो पहले ही मिट्टी है, वो मिट्टी उसमें घुसी क्या? आकाश घुस गया तो आकाश तो पहले से ही उसमें है नारायण। प्रतिबिंब घुस गया तो चैतन्य का, परमात्मा का तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है। निरवयव पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। निरवयव और सर्वव्यापक पदार्थ का विचार सागर में यह प्रश्न उठाया है तो उसका जवाब दिया है मां कि नहीं, जैसे आकाश सर्वव्यापक है तो आकाश का प्रतिबिंब जो है पानी में दिखता है कि नहीं, तो निरवयव पदार्थ का भी प्रतिबिंब दिखता है, क्योंकि वो आभासवादी है ना, तो उस बात को पक्का करते हैं। लेकिन ये तर्क जो है ये ठीक नहीं है, क्योंकि आकाश का प्रतिबिंब थोड़ा ही पड़ता है, वो तो आकाश में ग्रह नक्षत्र और जो चीजें दिखलाई पड़ रही हैं उनका प्रतिबिंब दिखता है और उससे आकाश की एक अनुभूति होती है। जैसे ये दीवारें दिखती हैं, इस दीवार से ये पोल दिखता है, आकाश जिसको बोल रहे हो, अगर दीवार न हो नारायण तो ये पोल भी आपके अनुभव में नहीं आएगा। तो निरवयव पदार्थ जो है उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता। तो ये सब रिजेक्ट करते हुए तो फिर वो पूर्व पक्षी कहता है कि अच्छा तो फिर या तो इस श्रुति को छोड़ दो, निरर्थक है ये श्रुति, नहीं तो बताओ कैसे घुसा। तो बोले ऐसे घुसा कि जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार अर्थ करो। यो वेद निहतम गुहायाम परमे व्योमन, इस बुद्धि रूपी गुफा में ये परमात्मा घुसता है, तो बुद्धि में परमात्मा का जैसा स्फुरण हो रहा है विज्ञान में कोश में, बस वही उसका घुसना है। क्या अनुभव हो रहा है विज्ञान में कोश में? मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जानता हूं। अभी ये करता हूं, भोगता हूं, जानता हूं, ये तो औपाधिक धर्म प्रतीत हो रहे हैं, और मैं करता हूं, मैं जानता हूं, मैं भोगता हूं, ये मैं कौन है? तो बोले ये वही मैं है जो सृष्टि रच करके इसमें घुस गया। बस समझना वेदांत का इतना ही है कि ये जो मैं बोलता है ये असल में परमात्मा ही है। ये आवाज तो जो हो रही है मैं की, आवाज माने शब्द और उसका अर्थ जो हो लग रहा है, वो तो उपाधि के कारण हो रही है। महाराष्ट्र ऐसे बोलते थे कि जैसे दाल चढ़ा दो तो उसमें जब खदका पड़ता है ना, वो तो फुदुर 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 उसकी आवाज होती है। तो ऐसे ही इस अंतःकरण में ये एक तरह से दाल पक रही है, तो ये अहम 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 ऐसे फुदुर फुदुर हो रही है नारायण। तो आवाज को मत जाओ, ये चीज क्या है? तो वो जो फुतुर फुतुर होती है उसमें तो पानी भी है, आकाश भी है, वायु भी है, और दाल तो है ही है नारायण, नीचे अग्नि जल रही है, तो इन सब का मिला जुला रूप जो है वो फुतुर फुतुर की आवाज है। ऐसे ये पंचभूत और अंतःकरण, इनकी मिली जुली आवाज होती है कि मैं। अब ये मैं जो है ये यह की अपेक्षा से तो अलग मालूम पड़ता है। ये शरीर तो यह है या मैं है? मानते तो हम इसको मैं है, लेकिन है तो यह दिखाई पड़ रहा है, तो यह की अपेक्षा से मैं अलग मालूम पड़ता है। लेकिन अगर यह ना स्फुरित हो तो मैं बना भी स्फुरित ना हो। सुषुप्ति में क्या होता है? इंद्रियां नहीं रहती, मन नहीं रहता, पूरा अंतःकरण शांत हो जाता है, तो यह भी स्फुरित नहीं होता, और यह स्फुरित नहीं होता तो मैं भी स्फुरित नहीं होता वहां। तो ये जो मैं आवाज हो रही है ये यह की अपेक्षा से हो रही है। तो लगता तो यह है कि ये मैं जो है इस शरीर से अलहदा हूं, लेकिन असल में ये दोनों एक ही कक्षा की हैं। यह भी औपाधिक प्रतीति है और मैं भी औपाधिक प्रतीति है, लेकिन इसमें जो मैं है माने मैं का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रत्यगात्मा है, ब्रह्म है। यही बात वेदांत समझाता है। कल आपको बताया था अस्तित्व के बारे में, वो बात अगर पकड़ में आ जाए ना तो वेदांत का अनुभव हो जाता है। बस यह को छोड़ते जाइए आप तो मैं अपने आप छूटता चला जाएगा। जब मैं भी छूट जाएगा तो यह और मैं का जो साक्षी है वो अपने आप ही शेष रह जाता है, वो ब्रह्म है। ये महावाक्य बताता है, वेदांत बताता है। समाधि, इसी को समाधि बोलते हैं नारायण। समाधि शब्द से हमारे पतंजलि जी की जो समाधि है ना अष्टांग योग वाली, उसका भ्रम होता है। वेदांत की समाधि यही है कि यह छूटता जाए तो यह की अपेक्षा से जो मैं है वो भी छूट जाता है, और जब यह और मैं दोनों छूट जाते हैं तो जैसे सुषुप्ति की स्थिति हो गई ऐसे हो गई। लेकिन सुषुप्ति में तो तमोगुण है और हम तो शांत होकर के बैठे हैं, ये तो सत्वगुण है। तो यही समाधि है नारायण। इसमें अब जो शेष रहा वो कहते हैं बस यही है, यही हो तुम, अब ज्यादा मत भटको नारायण। और जैसे मेरे में बताता है ऐसे ही आपके में भी बताता है, इसी को ब्रह्म बोलते हैं। मेरा मैं आपका मैं एक है तो ये ब्रह्म है, और मेरा मैं अलग है और आपका मैं अलग है तो ये जीव है। अलग पना जीव है और एक पना जो है यही ब्रह्मत्व है। लेकिन मैं को तो अनुभव कर लो ना पहले। तो ये जो विज्ञान में कोष में जिस रूप में आत्मा इस समय स्फुरित हो रहा है यही परमात्मा का इसमें अनुप्रवेश करना है। ये भाष्यकार ने बड़े लंबे विस्तार के साथ ये निष्कर्ष निकाला है। अब कहते हैं कि अनुप्रवेश तो हो गया, उसके बाद क्या किया? तो बोले तदनुप्रवेश्य सच्चो त्यच्च अभवत निरुक्तम च अनिरुक्तम च निलयम च अनिलयनम च विज्ञानम च अविज्ञानम च। अनुप्रविष्ट होने के बाद जो सत है वो प्रकट हो गया और जो त्यत है वो प्रकट हो गया। सत कहते हैं जो नाम रूप वाली चीजें हैं, और त्यत कहते हैं जिनका नाम रूप नहीं है, माने जो कारण अवस्था में है आगे उनका नाम रूप प्रकट हो जाएगा। जैसे घड़े, एक तो है घड़ा और एक है मिट्टी, तो मिट्टी में आगे घड़ा बन सकता है, लेकिन घड़े को तो कहेंगे सत, वो तो व्यवहार का विषय है, और मिट्टी जो है वो अभी है त्यत, माने उसमें से आगे घड़ा निकल आएगा, अभी घड़ा नहीं निकला है। तो अमूर्त को त्यत बोलते हैं और मूर्त को सत्य बोलते हैं। सत्य शब्द जो है यहां व्यावहारिक अर्थ में ही प्रयुक्त है। और निरुक्तम च अनिरुक्तम च, जिसको शब्दों से कहा जा सकता है वो निरुक्त है, और जिसको शब्द से नहीं कहा जा सकता वो अनिरुक्त है। वैसे एक बात है, जिसको शब्द से नहीं कहा जा सकता तो कोई ना कोई तो ये भी तो शब्द ही हुआ कि शब्द से नहीं कहा जा सकता। तो शब्द के बिना तो कुछ कह ही नहीं सकते, किसी भी ज्ञात अज्ञात का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन वृत्ति तदाकार नहीं होगी अगर वो वस्तु सत्य व्यवहार या नहीं है तो। कल्पना लोक में जा सकते हो आपने भूत देखा है? ना भगवान करे किसी को दिखाई पड़े, लेकिन भूत शब्द सुनते ही सबकी अलग अलग एक मन में आकृति आ जाती है। भूत प्रेत ऐसा होता है, तो ये कल्पना है। तो ये अनिरुक्त है नारायण भूत जो है, प्रकृति शब्द बोलते हैं, शब्द तो है उसके लिए, लेकिन उसकी कल्पना कुछ नहीं होती है। माया शब्द बोलते हैं तो कोई जो है डाकनी शाकनी की तरह से माया को मानते हैं, कोई कृपा मूर्ति मानते हैं, कुछ न कुछ उसके बारे में कल्पना कर लेते हैं। शब्द तो है लेकिन वो निरुक्त हो या अनिरुक्त हो, तो बोले ये सब जो परमात्मा जीव रूप से बैठ गया ना यहां अहम रूप से, बस उसी में ये सब फुरनाएं होती रहती है। व्यवहार की फुरना हो गई सत हो गया, अव्यवहार्य हो गया अत्यर्थ हो गया, शब्द से कहा जाता है तो निरुक्त हो गया, नहीं कहा जाता है तो अनिरुक्त हो गया। सेंटर जो है हर चीज के अनुभव का वो ये अहम ही है। और निलयम निलयनम च अनिलयनम च, जिसका कोई आश्रय है, मकान है, घर है, वो उसको बोलते हैं निलय। निलय माने घर। और अनिलय जिसका कोई घर ना हो, कोई आश्रय ना हो, कोई आधार ना हो, वैगाबॉन्ड अब जो पहले महात्मा होते थे, अब तो सबके हेडक्वार्टर हैं, सब महात्माओं के हेडक्वार्टर हैं और बढ़िया बढ़िया हेडक्वार्टर हैं। अब पहले महात्माओं का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता था, किसी घर में न घर कर बैठ जाना दारे फानी में। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि किसी भी घर को अपना घर मत बना लेना।